और कल्प माने घमंड और ममता रही। शांत चित पुरुष परमात्मा की ब्रह्म की प्राप्ति के लिए समर्थ होता है, फिर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती और समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। ब्रह्म भूत जो पुरुष है, ब्रह्म के स्वरूप में जिसकी स्थिति हो गई है, जिसका ये भाव हो गया कि मैं ही ब्रह्म हूँ, उसके चित्त में हर वक्त प्रसन्नता रहती है। ये उस कोटि के साधक की बात है, ज्ञान के मार्ग के द्वारा जो उच्च कोटि का साधक बन चुका है उसकी बात है। और न सोचती न कांक्षी, न तो कोई बात का शोक करता है और न कोई आकांक्षा करता है, वह मेरी पराभक्ति को यानी तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। और उस तत्व ज्ञान से मुझ परमात्मा को जू का तू जान करके फिर मेरे में प्रवेश कर जाता है। तो ज्ञान के मार्ग के बीच के मां भी हमता और ममता का त्याग बतला, और भक्ति के मार्ग के मां भी और कर्मयोग के मार्ग के मां भी, भक्ति के मार्ग के बीच के मां भगवत अर्थ कर्म करने के समय में जो शुद्ध अहंकार रहता है उससे वो पाप से लिपायमान नहीं होता, स्वार्थ न रहने के कारण से, फिर आगे जाकर के वो अहंकार भी मिट जाता है। इसी प्रकार से कर्मयोग के मार्ग के मां फल और आसक्ति का त्याग कर करके कर्म करने वाला, उसमें स्वार्थ और आसक्ति का सब का त्याग है, इस वास्ते वो कामना का भी उसमें अभाव है, इसलिए आपने वो पाप का भागी नहीं होता। उसके मां जो शुद्ध अहंकार रहता है तो वो अहंकार नहीं के समान ही है, आगे जाकर उस अहंकार का भी विनाश हो जाता है। तो ये समझ लेना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति किसी भी मार्ग से हो, उसके बीच के मां न कामना रहती है न आसक्ति रहती है, माने राग द्वेष भी नहीं रहते, आसक्ति भी कवचे राग को और कामना भी नहीं रहती, और अहंकार और ममता का भी अभाव हो जाता है। अहंकार का, ममता का, कामना का, आसक्ति का, इन सब का अभाव हो जाता है आगे जाकर करके, चाहे कर्मयोग से माने कर्मयोग को द्वार बनाकर चाहे साधन करो, चाहे ज्ञान योग को साधन ज्ञान योग को द्वार बना करके साधन करो, चाहे भक्ति योग, उसका आखिरी नतीजा सबका एक ही होता है और सबके मां समता आ जाती है, जिसका विस्तार थोड़ा रात्रि के मां कहकर आपको बताया था। साधन के बीच के मां भी समता की आवश्यकता है और सिद्ध में तो समता आ ही जाती है। तो जिसके मां समता नहीं है वो साधक साधक नहीं और वो सिद्ध सुसिद्ध नहीं। जिसके बीच के मां अहंकार है, ममता है, तब तक उसका दर्जा नीचा है, चाहे कर्म योगी हो, चाहे सांख्य योगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो। और आसक्ति के अभाव के बिना कोई भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। जब आसक्ति का अभाव हो जाता है तो फिर आसक्ति के साथ ही काम और क्रोध का भी अभाव हो जाता है, क्योंकि सम जो आसक्ति है उसी से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। तो सारे विकारों का अभाव हो जाता है आसक्ति के अभाव होने से। संगासंग जाते काम है कामात क्रोध हो भी जाते, क्रोधात भक्ति संगो है, संगमोहात स्मृति भी भ्रम, स्मृति भ्रम साथ बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। ये दिख रहा है कि संसार के भोगों के मां आसक्ति उत्पन्न होती है ना, क्यों होती है कि विषयों के चिंतन करने से। तो विषयों का चिंतन करना ही एक प्रकार से थी हमारे लिए समझना चाहिए पाप के तुल है। जाए तो विषयन पुरुष संघ से शुभ जाते, ये पुरुष जो विषयों का चिंतन करता है, चिंतन विषयों के ध्यान करते हुए पुरुष में आसक्ति पैदा हो जाती है। फिर क्या होता है, फिर वो आसक्ति सारे अनर्थों की मूल है। तो संगात संग जायते काम है कामात क्रोध हो भी जायते, उस आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना की पूर्ति में कहीं आघात पड़ता है, व्याघात पड़ता है तो क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से फिर मोह जो है अज्ञान उत्पन्न हो जाता है और फिर मोह से श्रवण शक्ति ठीक नहीं रहती, उसका विनाश हो जाता है और अपने श्रवण शक्ति के विभ्रम होने से और फिर इसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से इसका खुद का फिर पतन हो जाता है। तो ये कर्म दिख रहा है, इससे ये बात सिद्ध हुई कि आसक्ति सब अमरसों की मूल है, तो आसक्ति के त्याग बिना कोई भी कार्य की सिद्धि ऐसा नहीं होती, इसलिए आसक्ति का त्याग हम लोगों को अवश्य करना चाहिए। वो आसक्ति समझो सारी क्रिया में, सारे पदार्थों में, शरीर में और सब इंद्रियों के बीच के मां घर करके वो आसक्ति बैठी हुई है और आसक्ति का कार्य जो काम है वो अशोक घर करके बैठा है। भगवान ने गीता की तीसरी अध्याय में बतलाया कि ये काम ही तुम्हारा शत्रु है और ये एक प्रकार से मन बुद्धि और इंद्रियों के ऊपर थाना डाल करके इसके ऊपर कब्जा कर करके बैठा है। तो इस वास्ते इस काम पापी को तुम मारो। वो काम क्या कि जो आसक्ति से जय की उत्पत्ति हुई अब वो सारे पापों का सारे अंधों का मूल है जो काम है। काम ऐसे करोगे सर जो गुण समुद्र है पर माँ सन्नो माँ पाप माँ विद्यम बरिनम। ये काम है ये क्रोध है, क्यों कि काम आप क्रोध भी जाते, इस वास्ते काम है ये क्रोध है, इसकी रजोगुण से उत्पत्ति है। तो बोले तो वहां तो ये बात कही सनातन जाते काम आसक्ति से कामना की उत्पत्ति है और यहाँ आप कहते हो कि रजोगुण से इसकी उत्पत्ति है, तो पूर्वापर में विरोध आता है कि इसकी उत्पत्ति रजोगुण से है या इसकी उत्पत्ति सो अपने आसक्ति से है। बोले दोनों एक ही चीज है, रजो रागात्मक विद्धि, रजोगुण को तू राग ही समझ, जो रजोगुण है वही राग मन आसक्ति है, जो आसक्ति है वही रजोगुण है। तो जहाँ जहाँ एक प्रकार से थी समझो कि विषय आ रहे है तो यज्ञ को दान को तप को उनके भीतर के बीच के मां आसक्ति और आसक्ति से उत्पन्न वाली कामना, जिसमें कामना और आसक्ति है वही कर्म जो है सो राशि कर्म है, चाहे यज्ञ हो दान हो चाहे तप हो चाहे कुछ भी हो। तो रजोगुण और राग बन आसक्ति एक ही चीज है, ये बात बतलाई गई। तो जिससे काम की उत्पत्ति है वो है सो रजोगुण, वो है आसक्ति। तो आसक्ति सब अनर्थताओं को सब अनर्थताओं को मूल है, वो आसक्ति प्रधानता से सारे संसार में है, किंतु विशेषता से आपको बतलाई जा रहा है कि कंचन और कामनी और मान बड़ाई और सुलझो की ईर्षा इनके मां वो विशेष रूप से विराजमान है। और शरीर में कंचन तजना सहज है सहज त्रिया का नेह और मान बड़ाई ईर्खा दुर्लभ तजना। ये कंचन माने समझो कि सोना और सोने से जो मिले रुपया सिक्को जो है चाहे लोट ही हो, मैं को नाम भी आजकल कंचन ही है, देखने में तो कागज है किंतु मैं को नाम कंचन समझना चाहिए, मतलब रुपयों से है। तो इनका त्याग करना सहज है, सहज तो नहीं अपेक्षा कर तो सहज है। और कंचन के बाद आई कामनी, उससे कामनी का त्याग करना कठिन है, स्त्री भोग का त्याग करना। तो मनुष्य इन दो को त्याग भी दे तो आगे जो घाटी हो रही से कठिन है, मान और मान से भी बढ़कर के बड़ाई, बड़ाई के लिए मान को भी छोड़ देता है कि लोग मेरी कीर्ति करेंगे, तो मान प्रतिष्ठा को छोड़ो, तो मान प्रतिष्ठा को छोड़ देता है कीर्ति के लिए। उससे भी और कठिन त्याग है ईर्षा, मन संसार के मां समझो कि लोग मेरी इज्जत करते हैं एक प्रकार से, समझो कि कोई कहते हैं कि अच्छा पुरुष है, अच्छा योगी है, कोई महात्मा है, कोई ज्ञानी है, कोई भक्त, ऐसा कहते हैं। किंतु ये सुनकर के भी मनुष्य के हृदय में ये बात आती है कि मेरे से दूसरा श्रेष्ठ कायम नहीं रहे। बोले ऐसा अमुक आदमी तो बहुत ही अच्छा है, किंतु उससे भी वे महात्मा और बढ़कर है, तो ये सुनना नहीं चाहता। जब तक मन के मां अज्ञान रहता है, जब तक एक प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, तब तक एक प्रकार से ये बात अगर थी, तो ये बताया गया कि ये पांच आसक्ति के प्रधान स्थान है और छठा शरीर, शरीर में सबसे प्रकृति। माने मनुष्य जो है शरीर के आराम को जल्दी छोड़ना नहीं चाहता। मानो ये शरीर है वही मेरी आत्मा है, शरीर ही खुद बना हुआ है। समझदार तो यूं समझता है कि शरीर तो मैं नहीं हूं, किंतु शरीर के अंदर मैं हूं, ये शरीर है सो मेरा है। तो शरीर के मन जो हीनता है वो तो बहुत ही खराब है, और ममता है वो भी खराब है। तो ममता और हीनता होने के कारण से शरीर में विशेष आसक्ति है, और ओम के मन जो आसक्ति है वो शरीर को लेकर ही है अधिकांश में। तो इसलिए इस हीनता ममता का और आसक्ति और कामना का त्याग करके जो संसार में विचरण करता है वही उच्च कोटि का महात्मा पुरुष है। तो ये बात आपको बतलाई कि कामना का सर्वथा त्याग करना चाहिए, और यानी किसी के साथ में व्यवहार करो तो स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। जैसे हम लोग रेलगाड़ी में जाते हैं तो उस जगह के बीच के वहां समझो कि हम सोचते हैं तो वहां स्वार्थ सिद्ध हो ही जाता है। उसमें तीन प्रकार का बर्ताव है, एक सात्विक है, एक राजसी है और एक तामसी है। तो तामसी व्यवहार तो कभी करना ही नहीं, और राजसी जो व्यवहार है वो नीति का व्यवहार है, नीति है जो कि वो न्याय है एक प्रकार। उसको राजसी क्यों कहना चाहिए? नीति और न्याय को तो यही कहना चाहिए कि अच्छा व्यवहार है, बोलो हम उसको अच्छा मानेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए हमारे को ये समझना चाहिए कि जैसे तीन प्रकार का दर्जा है तो वो भी एक प्रकार का नीचा दर्जा है, जो नीति का जो व्यवहार है। हाँ, अनीति से तो अच्छा है, तो फिर नीति से अच्छा और कौन सा व्यवहार है? वो है आपसे नीति से बढ़कर धर्मशास्त्र, जो धर्म का जो व्यवहार है वो। और धर्म का भी दो भेद है, एक सकाम एक निष्काम। सकाम जो धर्म है वो राजसी है, और निष्काम जो धर्म है वो सात्विक है। इसलिए उसे नीति के व्यवहार को भी राजसी के साथ में शामिल कर लेना चाहिए। यदि सात्विक में करना चाहो तो ये समझ लेना चाहिए कि उसका कोई फल नहीं है। जैसे आपको मैं उदाहरण से समझाता हूँ कि हम लोग रेल में जाते हैं और हमारी सीट रिजर्व है, रात का वक्त है, हम चार भाई उस डब्बे में हैं और चारों अपनी अपनी सीट पर लेट रहे हैं। एक पांचवा आदमी और टिकट लेकर के आ गए, सीट चार है, और वो बेचारा वहां डब्बे में अपने उस गाड़ी के वहां जो जगह रहती है वहां आकर के बैठना चाहता है या बैठ गया। अब वो आकर के बैठ गया तो नीति के हिसाब से हम उसको बाहर में हटा सकते हैं, गार्ड को कहकर कि गार्ड साहब ये कायदा नहीं है, रात्रि के समय के वहां जितनी सीट है उतने आदमी रहने चाहिए, तो गार्ड उसको हटा देगा। ये नीति की बात है, किंतु साथ में स्वार्थ होने के कारण से नीति की बात होते हुए भी राजसी बात है, सात्विक नहीं है।